Yesterday, for the last 2 days, we've been talking about gospel truth.
कल और पिछले दो दिन से हम लोग सुसमाचार पर आधारित सत्यों के बारे में बात कर रहे हैं.
What is the gospel?
सुसमाचार क्या है?
What is man's condition?
मनुष्य की स्थिति क्या है?
What is true salvation?
सच्चा उद्धार क्या है?
What is the order of salvation?
उद्धार का क्रम क्या है?
You must be very clear on these truths.
आपको इन सत्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए.
Today we're talking more about sanctification and the Christian life.
और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक मसीही जीवन और उससे संबंधित पवित्रीकरण के बारे में.
We want to try to answer these questions.
हम इन प्रश्नों के बारे में उत्तर देना चाहते हैं.
These are very important subjects you need to be clear on.
और ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आपको और स्पष्ट होना है.
What is sanctification?
पवित्रीकरण क्या है?
What does it mean to be in Jesus Christ?
यीशु मसीह में होने का मतलब क्या है?
What is the ministry of the Holy Spirit in the life of the believer?
एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की सेविकाई क्या है?
What is the believer's relationship to the law of God?
और एक विश्वासी के जीवन में व्यवस्था का संबंध क्या है?
What is true gospel obedience?
सच्चा सुसमाचार की आज्ञाकारिता क्या है?
Now this is very simple but very important.
ये सब बड़ा ही साधारण बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है.
We need to review these things briefly again.
हमें इन बातों को फिर से दोहराना पड़ेगा.
Because you must clearly preach these things to the people of God.
क्योंकि आपको इन्हें स्पष्टता के साथ परमेश्वर के लोगों को बताना होगा.
What does it mean to be sanctified?
पवित्र होने का मतलब क्या हो गया?
What does it mean to be in Jesus Christ?
यीशु मसीह में होने का मतलब क्या हो गया?
What is the ministry of the Holy Spirit in our life?
पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में सेविकाई का
मतलब क्या
हो गया?
What is our relationship to the commandments of God?
परमेश्वर की आज्ञाओं से हमारा क्या
लेना देना बिटवीन गॉस्पल ओबीडियंस एंड लीगल ओबीडियंस.
सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता और वैधानिक आज्ञाकारिता में फर्क क्या है?
Now we're going to try to cover those things again today.
और उन बातों को आज हम देखना चाहेंगे.
We've been talking about what is sanctification.
हम बात कर रहे हैं पवित्रकरण क्या है.
So the New Testament talks about sanctification in three ways.
हमने बात किया कि नया नियम पवित्रीकरण के बारे में तीन तरह से बात करता है. हमारी स्थिति
that happens when we are converted.
जब हम हृदय परिवर्तन सबकी बात
progressive sanctification.
प्रगतिमान पवित्रीकरण.
That happens from the new birth until death.
और ये होता है नए जन्म में जब तक हम हमारी मृत्यु नहीं आती है.
It is a process of growth.
और ये वृद्धि की प्रक्रिया है.
The goal is the image of Jesus Christ.
और लक्ष्य है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं.
And it is characterized by both putting off the old man and putting on the new man.
और इसमें हम लोग पुराने मनुष्यत्व को उतारते हैं और नए मनुष्यत्व को चढ़ाते हैं.
Again, look in the book of Ephesians.
और इफिसियों की पत्री में देख लीजिए.
We're talking about our own personal growth in Christ.
और यहाँ पे बात हो रही है हम लोग व्यक्तिगत वृद्धि आपने वृद्धि मसीह में.
Must be able to teach this clearly and plainly to the people of God.
और हमें इसको स्पष्टता के साथ सफाई के साथ परमेश्वर के लोगों के पास सिखाने की क्षमता होनी चाहिए.
Ephesians in chapter 4.
इफिसियों के चौथा अध्याय.
Very familiar verse.
अपने बहुत ही जाना पहचाना पद.
Verse 22.
22 पद.
That in reference to your old manner of life you lay aside the old self which continues to be corrupt according to the lust of deceit.
और यहाँ पे जो भी पुराने नियम के पुराने शरीर के अनुसार बातों को हमें उतारते जाना हटाते जाना है.
Verse 23 and that you be renewed in the spirit of your mind.
और 23 पद में यहाँ पे लिखा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ.
It's the understanding of truth in the mind.
और ये हमारे मन में जो समझ है उसको समझना
है. The power of the Holy Spirit in the heart and life.
और हृदय और जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य.
Verse 24
That
enables us to put on the new self.
और ये हमें मदद करता है कि हम नए मनुष्यत्व को डाल लें अपने ऊपर.
And what is the characteristic of the new self?
और जो नया मनुष्यत्व है उसका चरित्र क्या होता है?
It is created in righteousness and holiness of the truth.
वो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है.
So Paul says we are to lay aside and to fight against our old remaining indwelling sin.
तो पौल कहता है कि हमें जो बाकी जो बच गया है हमारे अंदर रह गया जो पुराना मनुष्यत्व है उससे हमें लड़ना है उसको हटाना है हमें.
Look in the book of Colossians.
और कुलूसियों की पत्री में
Colossians and chapter 3.
कुलूसियों का तीसरा अध्याय.
Verse
5.
Now consider the members of your earthly body as dead to sin.
Verse 7.
In them you once walked when you were living in them.
Verse 8.
Now put them all aside.
Verse 9.
Don't lie to one another since you've laid aside the old self.
Verse 10.
And put on the new self. And how is it renewed? To a true knowledge according to the image of the one who created him. God wants us to continue to grow into the image of Jesus Christ. To fight against remaining sin. And to put on the new man.
Lord,
I ask you this question before.
मैं आपसे ये प्रश्न पहले पूछ चुका हूँ.
If I ask you to write down what you consider the three main weaknesses and tendencies of your remaining sin in your own life, what would they be?
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जीवन में बचे हुए तीन पुराने मनुष्यत्व की बातों को बताएंगे तो आप क्या बताएंगे मुझको? अगर मैं आपसे कहूँ तीन बातें हैं आपके जीवन में, शरीर में बच्चा हुआ शरीर का प्रभाव या मनुष्य तो है, तीन बातें आप क्या बताएंगे?
We all have remaining indwelling sin.
तो हम सब के अंदर बच्चा हुआ पाप का प्रभाव है जो अभी भी विद्यमान है.
But in our own individual lives and our different lives, its expression may be different as to its weaknesses and tendencies.
लेकिन हम सब के जीवन में, यद्यपि हम सबके अंदर पाप है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, प्रगटीकरण हम लोग के अलग अलग जीवन में अलग अलग होगा.
One man struggles especially against pride or insecurity.
तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक जन है, वो विशेष तौर से घमंड से और असुरक्षा की भावना से संघर्ष करता है.
One man struggles especially with lust and a lack of self-control.
और ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है जो वासना के मामले में, कामुकता के मामले में और अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता उन मामले में. तो अलग अलग लोग अलग अलग पाप के बचे हुए प्रभाव और शरीर के प्रभाव से लड़ते हैं, उनकी अभिव्यक्ति अलग 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 लोगों में भिन्नता दिखाई देती है.
Struggle with anger and a bitter spirit.
और कुछ लोग हो सकते हैं उनके अंदर क्रोध हो सकता है या कड़वी आत्मा हो सकती है, कड़वाहट दूसरों के प्रति हो सकती है.
He may be insensitive and have no compassion.
और हो सकता है अगला व्यक्ति ऐसा हो जो असंवेदनशील हो और उसके अंदर कोई दया नाम की चीज ना हो.
Another man may especially struggle with laziness and a lack of discipline.
और हो सकता है कोई ऐसा भी आदमी हो जो आलस से संघर्ष करता हो और उसके अंदर अनुशासन नहीं पाया जाता हो.
And if you're going to grow, you must know your own peculiar weaknesses and tendencies.
और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपके अपनी स्वयं की कमजोरियों को और विशेष समस्याओं को आपको मालूम होना चाहिए.
And so sanctification is the process of gradually putting off our old sinful tendencies and being conformed to the image of Jesus Christ.
तो पवित्रीकरण ये है कि हमें अपने स्वयं के पाप को समझना और फिर यीशु मसीह के समानता में बनते चले जाना.
Have you ever asked yourself that question?
क्या आपने अपने आप से ये कभी प्रश्न पूछा है?
Do you know yourself?
क्या आप अपने आप को जानते हैं?
Are you aware of your weaknesses?
क्या आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं?
Many preachers,
बहुत सारे प्रचारक,
they don't think about the condition of their heart.
वो अपने, हम लोग अपने स्वयं के हृदयों के बारे में नहीं
सोचते. about their ministry.
तो हम लोग केवल सेविकाई के बारे में सोचते
हैं.
केवल हम अपने प्रचार के बारे में
सोचते हैं.
केवल हम अपनी कलीसिया के बारे में
सोचते हैं. think about their money.
केवल अपने पैसे के बारे में सोचते हैं.
think about their reputation.
केवल अपने नाम के बारे में सोचते हैं.
but they think about outward things.
ये केवल बाहरी चीजों के बारे में सोचते हैं.
but a holy man,
लेकिन एक पवित्र व्यक्ति,
is concerned about true inward purity.
वो वास्तविक भीतरी पवित्रता, शुद्धता के बारे में सोचता है.
a pure heart,
एक शुद्ध हृदय,
a good conscience,
एक अच्छा,
and a sincere faith,
एक सिद्ध अच्छा विश्वास.
and he knows his own sinful tendencies.
और वो खुद की पाप में विचारधारा को जानता है, प्रवृत्ति को जानता
है. and he prays against them.
और फिर वो अपनी पापी प्रवृत्तियों के विरोध में प्रार्थना करता है.
the word of God against them.
और फिर उनके विरोध में, उनके लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है.
and he asks for the power of the Spirit of God to overcome them.
और फिर परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करता है कि वो इन चीजों पे जय पा सके, विजयी हो सके.
and if you want the people you preach to grow, you yourself must be growing also.
अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीजों में बढ़ें तो आपको स्वयं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग इन बातों में बढ़ें तो आपको स्वयं भी इन बातों में बढ़ना होगा.
and the New Testament talks about sanctification in a third way.
और नया नियम पवित्रीकरण के बारे में एक और तरीके से बात करता है, तीसरी तरीके से बात करता
है. And what is that third way?
और वो तीसरी बात क्या है?
Final or complete.
अंतिम.
Or perfect.
सिद्ध, पूर्ण. सिद्ध, पूर्ण, अंतिम, अंततः.
And when does this happen?
और ये क्या हुआ? ये कब होता है? ऐसे कब हुआ ये? कब होता है?
Raw.
जब एक आदमी मर जाता है.
Do you say when men die?
Yeah, when men die. हाँ, बूढ़ा होता है? पूरा कब होता है? When the Lord comes back.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए बात को.
When a man dies,
जब एक आदमी मर जाता है,
he is freed from the body of sin.
वो पाप के शरीर से मुक्त हो जाता है.
And his soul is separated from his body.
और उसका प्राण उसके शरीर से अलग हो जाता है.
Paul said he's absent from the body, but present with the Lord. Absent from the body, present with the Lord.
तो वो शरीर से तो अलग है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में है.
Paul said it's better to die and to depart and to be with Christ.
तो कहता है कि पौलुस कहता है बेहतर है कि एक व्यक्ति के लिए मेरे लिए मरना और मसीह के सामने होना, उपस्थिति प्रभु के सामने उपस्थित होना.
Jesus said to the thief on the cross, "Today you will be with me in paradise."
आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे.
But listen carefully. That is not complete redemption.
वो संपूर्ण छुटकारा नहीं है.
That is not final sanctification.
वो अंततः अंतिम पवित्रीकरण अभी भी नहीं
है. Because you've been bought with a price.
क्योंकि आपको एक कीमत देकर छुड़ाया गया.
Not just your soul.
खाली आपका प्राण,
but also your body.
लेकिन आपका देह भी.
It belongs to God.
वो परमेश्वर का है.
Christ shed his blood to redeem your body also.
परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया आपके शरीर को भी छुड़ाने के लिए.
And he rose from the dead.
और वो मृतकों में से जी उठा.
And that tells us because we are in him, one day we too will rise from the dead.
तो एक दिन क्योंकि हम उसमें हैं, एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठेंगे.
And final and complete sanctification happens at the return of the Lord.
और अंतिम और आखिरी पवित्रीकरण तब होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे.
And your body will be joined together with your soul, and body and soul you will be perfectly sanctified forever.
और आपका आत्मा आपके शरीर से मिला दी जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके आत्मा और आपके शरीर सिद्धता के साथ पवित्र हो चुके होंगे.
Write this verse down.
इस बात को इस पद लिखे.
First Thessalonians.
पहला थिस्सलुनीकियों.
And chapter 5. Is that right? And verse 23.
5. Chapter 5, verse 23.
This is Paul's prayer.
ये है पौलुस की प्रार्थना.
Now may the God of peace himself sanctify you entirely.
आप शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूर्णतः पवित्र करें.
And may your spirit, soul and body be preserved complete without blame at the coming of the Lord Jesus Christ.
और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी तरह से निर्दोष और सुरक्षित रहे.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Is man made up of three parts or made up of two parts?
एक आदमी तीन हिस्से का बना होता है कि दो हिस्से का बना होता है? तीन.
The Bible speaks of man as material and physical or inward and immaterial.
Bible baat karti hai sharir ki bhautik aur sharirik baat karti hai aur aatmik aur jisko nahi chua ja sakta uski baat karti hai.
And when it talks about man's immaterial and non-physical part, it often uses different words to describe that.
तो जब हम बाइबल जब बाइबल बात करती है मनुष्य के गैर शारीरिक जिसको ना छुए जाने वाले हिस्से के बारे में बात करती है तो उसके बारे में कई शब्दों को इस्तेमाल करती है उस हिस्से के बारे में बताने के लिए.
द बाइबल डिस्क्राइब्स द इनवर्ड पार्ट ऑफ मैन, इट यूजेस डिफरेंट वर्ड्स.
और जब भीतरी हिस्से की बात करती है, भीतरे मनुष्यत्व की बात करती है, तो बाइबल अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करती है.
टॉक्स अबाउट द माइंड.
मन की बात
talks about the heart.
हृदय की बात
talks about the will.
इच्छा की बात
talks about the conscience.
विवेक की बात
sometimes it calls it this talks about the spirit.
कभी कभी आत्मा की बात
it talks about the soul.
प्राण की बात करती
है. Now listen carefully.
ध्यान से बात
men differ on this particular point.
इस विषय पे
लोग अलग understand is this.
आपको इस बात को समझने की आवश्यकता
है. Man is basically material and immaterial.
वास्तव में मनुष्य मुख्यतः दो हिस्सों में भौतिक और गैर भौतिक
and the bible describes the immaterial part with different words
और जो गैर भौतिक हिस्सा है उसको बाइबल अलग अलग शब्दों से वर्णन करती है
and the bible says that when christ returns
और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वापस आएंगे
that our entire existence body and soul will be entirely sanctified complete
तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व शरीर और देह और आत्मा संपूर्णता से शुद्ध पवित्र हो चुका होगा
Look in the little book of Jude.
और यहूदा की छोटी पत्री में देखिए जो आखिर में पाई जाती है
Right before the book of Revelation.
प्रकाशित वाक्य से तुरंत पहले यहूदा की पत्री देखिए
This is Jude's closing prayer.
और ये है यहूदा की आखिरी अंतिम प्रार्थना
वर्स 24
24 पद
लुक एट जूड 24
यहूदा का 24 पद देखिए
नाउ टू हिम हु वाज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग मेक यू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ हिज गॉड ब्लेमलेस विद ग्रेट जॉय
अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और अनंत कर खड़ा हो सकता है
इज टॉकिंग अबाउट आवर फाइनल सैंक्टिफिकेशन
वो बात कर रहा हमारे अंतिम अंतता अंतिम आखिरी धर्मी पवित्रीकरण के बारे में
Now let me ask you a question.
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं
I've asked you this before.
मैं आपसे पूछ चुका हूं ये पहले
Is heaven the final destination for the Christian?
क्या स्वर्ग मनुष्यों के लिए अंतिम गंतव्य है
Some say yes, some say no.
कुछ लोग कह रहे हां कुछ लोग कह रहे नहीं
Listen carefully.
ध्यान सुनिए जो आपने उसको उत्तर दिया था आप लगभग सही थे दिशा में जा रहे थे सही दिशा में जा रहे थे
Heaven is not the final destination for the Christian.
जो मसीह लोग हैं विश्वासी लोग हैं उनके लिए स्वर्ग अंतिम गंतव्य नहीं है समझ रहे इस बात को समझ रहे नहीं समझ रहे स्वर्ग हमारे लिए अंतिम गंतव्य नहीं है
Hell is not the final destination for the non-Christian.
और जो गैर विश्वासी लोग हैं उनके लिए नरक अंतिम गंतव्य नहीं है
What's the final destination for the Christian?
विश्वासियों के लिए अंतिम गंतव्य क्या है हाँ विश्वासियों के लिए अंतिम गंतव्य क्या है तुमने क्या बोला न्यू क्रिएशन न्यू हेवन
The new heavens and the new earth.
नई सृष्टि में नया स्वर्ग और नई पृथ्वी
Now there have been three worlds.
तीन दुनिया है
The world that once was.
एक दुनिया जो थी पहले
It was destroyed by water.
जिसको पानी के द्वारा नाश कर
दिया The world that now is.
अब एक दुनिया जो अब है
It is preserved by God.
ये प्रभु के द्वारा बचाई हुई है
And the world that shall be.
और एक दुनिया जो आएगी
That is the world that God will recreate.
और वो दुनिया जिसको प्रभु दोबारा बनाएंगे
And body and soul we will dwell together with the living Christ with a new heavens and a new earth.
और हमारा शरीर और देह और आत्मा मसीह के साथ नई सृष्टि नई पृथ्वी पे हमेशा के लिए रहेगी
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं
Peter says, I will, Jesus said, I will create a new, Peter says that there will be a new heavens and a new earth.
पत्रस कहता है कि एक नया स्वर्ग होगा और नया पृथ्वी होगी
Look in 2 Peter.
दूसरे पत्रस
देखिए. We're talking about final sanctification.
अंतिम पवित्रीकरण के बारे में बात करें हम लोग
It includes the renewal of the whole earth, the whole world, the heavens and the earth.
यहाँ बात हो रही है संपूर्ण सृष्टि का नया बनाया जाना
All the earth now groans anxiously awaiting the revelation of the sons of God.
और संपूर्ण सृष्टि आहें भरती है पर मनुष्यों के पुत्रों के प्रकट होने के लिए.
Now we do not appear to be the children of God.
हम अभी तो परमेश्वर की संतान नहीं प्रकट होते हैं.
We know that when he comes, we shall be like him because we shall see him as he truly is.
लेकिन हम जानते हैं कि जब वो आएगा तब हम उसके समान होंगे क्योंकि हम उसको वास्तव में देखेंगे जैसा वो है.
Why are there earthquakes?
क्यों भूकंप आते हैं?
Why are there storms?
क्यों तूफान आते हैं?
Why is the earth in turmoil?
क्यों ये पृथ्वी इतने उथल पुथल में है?
Sin has affected and touched not just man, but it has touched and contaminated the entire earth.
और पाप ने ना सिर्फ मनुष्य को प्रदूषित किया है लेकिन पाप ने संपूर्ण पृथ्वी को दुनिया को प्रदूषित किया है.
Why do animals eat other animals?
क्यों एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेते हैं?
Why do dogs fight with each other?
क्यों एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ता है?
Because the earth has been affected by sin.
क्योंकि जो पृथ्वी है पाप के द्वारा प्रदूषित हुई है.
And in the new heavens and the new earth, it says the lion will lay down with the lamb.
और नए सृष्टि में लिखा है कि सिंह के साथ एक मेमना साथ में बैठेंगे.
And the little child will put his hand upon the serpent.
और एक छोटा बच्चा सांप के बिल में अपना हाथ डालेगा.
God will make a new heavens and a new earth.
परमेश्वर एक नई सृष्टि और नई पृथ्वी का निर्माण करेगा.
There will be no more war.
फिर युद्ध नहीं होंगे.
There will be no more death.
फिर मृत्यु नहीं होगी.
There will be no more tears.
फिर रोना नहीं होगा.
There will be no more sin.
फिर कोई पाप नहीं होगा.
There will be no more corruption.
फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा.
Why do trees die?
क्यों पेड़ मर जाते?
Why do animals die?
क्यों जानवर मर?
Because the earth has also been corrupted and polluted.
क्योंकि ये पृथ्वी प्रदूषित हो चुकी है और भ्रष्ट हो चुकी
है. But God is going to make a new heavens and a new earth.
लेकिन परमेश्वर एक नई पृथ्वी और नई स्वर्ग बनाएगा.
And if you are a Christian,
और यदि आप मसीह हैं,
your soul and your body will be reunited and will dwell forever in a new heavens and a new earth.
आपका प्राण और आपकी आत्मा और आपका देह जुड़ जाएंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए नई पृथ्वी और नई सृष्टि पर रहेंगे.
Second Peter,
दूसरा पत्र,
chapter
3,
notice what he says, verse
10,
the day of the Lord will come like a thief.
प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा.
And the heavens and the earth will pass away like a roar, and all that is in it will be burned up.
जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तब प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे.
Verse 12.
12 पर,
we are looking and hastening the coming of the day of God.
तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए?
The heavens will be destroyed and the elements will melt with intense heat.
उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे.
Verse 13.
13 पर,
we want to go to heaven.
हम जाना चाहते हैं.
When we die, we will go to heaven.
और जब हम मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे.
But we are looking, verse 13, according to his promise, to a new heavens and a new earth in which righteousness dwells.
लेकिन तेरा पद के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है.
And if you understand this,
और यदि आप इसको समझ जाएंगे,
not just write it in your notebook,
केवल अपनी किताबों में,
but you understand it in your mind,
लेकिन अपने मस्तिष्क में समझ जाएंगे,
and you believe it in your heart,
अपने हृदय से विश्वास करेंगे,
and you think about it every day,
और इसके बारे में प्रतिदिन सोचेंगे,
and it is your hope and expectation.
ये आपकी आशा
it will have an influence on how you live now.
तो फिर ये प्रभाव डालेगा कि आप इस समय कैसे जिएंगे.
Verse 14.
14 पर,
therefore,
इसलिए,
since you look for these things, be diligent to be found in him in peace, spotless and blameless.
जब तुम इन बातों की आंख लगाए हो प्रार्थना करो कि तुम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ.
And when a preacher looks toward the world to come,
और जब ये प्रचारक आने वाली दुनिया की ओर देखता है,
he will seek and labor to keep himself pure.
तो वो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और मेहनत करेगा कि अपने आप को पवित्र और शुद्ध रख सके.
That is final and perfect sanctification.
ये है अंतिम और सिद्ध पवित्रीकरण.
Jesus Christ has a glorified human body in heaven.
यीशु मसीह के पास एक महिमान्वित शरीर है स्वर्ग में.
The second person of the Godhead took something with him to heaven that he did not previously have.
त्रिएक परमेश्वर के द्वित परमेश्वर ने द्वित जन ने अपने साथ एक ऐसी चीज लेके गए स्वर्ग में जो उनके पास पहले नहीं उपस्थित थी.
And what was that?
और क्या चीज थी ये त्रिएक परमेश्वर के दूसरे जन ने ऐसी कौन सी चीज अपने साथ स्वर्ग लेके गए जो पहले उनके पास नहीं थी। हाँ जी
That's true.
आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
But what he's taking to heaven is a body.
लेकिन जो वो स्वर्ग में लेके जा रहे हैं।
And that body was raised from the dead.
वो अपने साथ एक शरीर को लेके आ रहे हैं, देह को ले रहे हैं।
And now it is glorified.
वो देह पुनरुत्थानित देह है और वो महिमान्वित है। और इससे पहले वो पृथ्वी पर आए थे।
Before he came to earth,
इससे पहले वो जमीन पर आए।
He did not have that body.
उनके पास वो देह नहीं थी।
The second person of the Godhead.
और परमेश्वरत का द्वितीय जन के पास।
The eternal Son of God.
अनंत काल का पुत्र।
He is called the Word.
अनंत काल परमेश्वर का पुत्र। वो स्वर्ग में से निकल के आए।
What did he say?
उसने क्या कहा?
When he stood upon the threshold of heaven,
जब वो स्वर्ग के द्वार पे खड़ा था।
And he was about to come to the earth,
जब वो पृथ्वी पे आने वाला था।
And in the mystery of the union, he was to inhabit the womb of Mary,
और वो इस समागम के रहस्य को जो मरियम के द्वारा वो लाने वाला था।
What did he say?
क्या कहा?
What words does the writer of Hebrews put into his mouth?
इब्राहिमियों के लेखक ने कौन से शब्द उसके मुख में डाल दिए?
When the firstborn comes into the world, this is what he says.
जब वो इकलौता पहलौठा इस दुनिया में आएगा तो उसने ये कहा।
And burn offerings for sin thou hast not desired.
उसमें ये कहा, इब्राहिमियों के लेखक कहता है कि बलिदान और बलिदान तुमने नहीं चाहा
है। But a body you have prepared for me.
लेकिन एक देह तूने हमारे लिए तैयार की है।
And lo, I say in the book of the scroll it is written of me, I delight to do your will, O God, your law is in my heart.
और जो तुम चाहते हो, जो देह तुमने दी है और इसके द्वारा तुम अपनी महिमा करना चाहते हो, ये मुझे प्रसन्न है करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए।
God gave him a body.
परमेश्वर ने उसको एक देह दिया।
And in that body he bore our sin.
और उस देह में परमेश्वर ने जो यीशु मसीह दिया था उसमें उसने हमारे पापों को सह लिया।
According to the scriptures.
वचन के अनुसार।
And he died.
जब वो मर गया।
According to the scriptures.
वचन के अनुसार जब वो मर गया।
And he was raised from the dead.
वो मृतकों में से जिलाया गया।
And body was raised.
और वो देह जिलाई गई।
Now in heaven.
अब एक स्वर्ग।
There is a glorified body.
एक महिमान्वित शरीर है।
And because you are in Christ.
क्योंकि आप मसीह में हैं।
And because he shed his blood to purchase your body and your soul.
क्योंकि उन्होंने अपना खून बहाया आपकी देह और आपके प्राण को बचाने के लिए।
Your body will be raised from the dead.
इसीलिए आपका देह भी एक दिन जलाया जाएगा मृतकों में से।
The Hindu,
हिंदू लोग
and the Buddhist,
और बौद्धिस्ट लोग
seek to live forever.
वो लोग हमेशा तक जीना चाहते हैं।
But only the Christian.
लेकिन केवल मसीह लोग हैं।
And the new heavens and the new earth.
नए स्वर्ग में और नए पृथ्वी में।
Will live blamelessly.
निर्दोषता के साथ जिएंगे।
Is hell the final destination for lost men?
जो मरे हुए लोग हैं उन लोग के लिए क्या नरक अंतिम, जो खोए हुए लोग हैं उनके लिए नरक अंतिम स्थान है क्या?
What's the final destination of all lost men?
जो सब लोग खोए हुए लोग हैं उनके लिए अंतिम गंतव्य क्या है? हाँ जी, नहीं नहीं, जो खोए हुए लोग हैं, जो लोग पापी लोग हैं, द लेक ऑफ फायर, आकी झील।
And death will give up its dead.
और जो मृत्यु है अपने मृत्यु
And the sea will give up its dead.
और जो समुद्र है वो मरे को छोड़ देगा।
And hell will give up its dead.
और जो नरक है वो मरे को छोड़ देगा।
And they will be bound together and cast body and soul into the lake of fire.
और उनको शरीर और आत्मा के साथ उस आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा।
But for the child of God,
लेकिन परमेश्वर की संतान के लिए,
he will live forever.
वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा।
And a new body,
एक नए शरीर
में। And a new heavens and a new earth,
और एक नए पृथ्वी और नए स्वर्ग में।
And he shall see him.
और वो उसको देखेगा वहां पे।
But those that are not Christians,
और जो लोग मसीह लोग नहीं हैं,
will live forever.
वो हमेशा तक जिएंगे.
In the lake of fire.
वो लोग अग्नि की झील में.
And they will be tormented forever and ever.
उनको हमेशा हमेशा के लिए प्रताड़ित किया जाएगा.
Because God is a righteous God.
क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है.
And if you're a child of God,
अगर आप परमेश्वर की संतान हैं,
you'll be sanctified entirely.
तो आप हमेशा संपूर्णता के साथ आपका पवित्रीकरण हो जाएगा एक दिन.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपके सामने?
What is the difference between a common man who is retired, if he dies, go to the hell, and a Satan who is in the form of Satan? What is the final result of his future or his body?
The second first was who? Satan, he said?
Yeah. Shaitan kaun? Pehla to ho gaya anny jati log jo prabhu ke aate
hain.
ठीक है, नरक जाएंगे. ठीक ठीक. शैतान जो
बहुत सताता है लोगों को, बहुत मारता है,
दुष्ट.
हाँ
ठीक है.
उसका क्या?
अच्छा ठीक है.
उसमें क्या फर्क है उनकी अंतिम प्रक्रिया?
डेविल, बेसिकली डेविल. व्हाट विल हैपन टू द डेविल? व्हाट विल हैपन टू नॉन क्रिश्चियन?
हु विल बी इन द लेक ऑफ फायर?
आग की झील में कौन कौन होगा अंत में?
बाइबल जीसस सेड द लेक ऑफ फायर हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द डेविल एंड हिज एंजल्स.
यीशु मसीह कहते हैं कि आग की झील को शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया.
सो द डेविल एंड हिज एंजल्स विल बी कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर.
तो शैतान और उसके स्वर्गदूतों को आग की झील में डाला जाएगा.
एंड ऑल चिल्ड्रन ऑफ द डेविल विल बी कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर विद हिम एज़ वेल.
और शैतान के सारे संतानों को भी आग की झील में डाला जाएगा.
सो दे ऑल हैव द सेम फाइनल डेस्टिनेशन.
तो चाहे वो गैर विश्वासी हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे शैतान के स्वर्गदूत हो, गैर विश्वासी सब लोग आग की झील में डालेंगे अंततः, अंतिम तौर पर, हमेशा हमेशा के लिए. एक ही जगह जाएंगे, कोई दूसरी जगह नहीं है.
वेयर डज जीसस से दैट?
यीशु मसीह क्या कहते हैं ये बात? कहां पे कहते हैं ये?
You need to know those verses. Jesus said it, and it also says it in the book of Revelation.
प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है और यीशु मसीह भी कहते हैं सुसमाचार में.
Any other questions?
कोई और प्रश्न? हाँ जी. क्योंकि कहीं और लिखा नहीं बारे में उसके बारे में. हाउ कैन वी नो फॉर श्योर दैट देयर वाज नो देयर इज नो बॉडी इन हेवन बिफोर जीसस वेंट बैक?
देयर आर सेवरल बॉडीज इन हेवन.
बहुत सारे देह हैं, शरीर, बहुत सारे देह हैं स्वर्ग में.
राइट नाउ,
अभी इस समय.
व्हाट बॉडीज आर दे?
कौन से देह हैं वो?
जीसस बॉडी,
यीशु मसीह की देह.
हु एल्स? Who?
Noah.
Who?
Noah. Somebody said Noah. Enoch.
Enoch.
Enoch. Elijah.
Elijah.
Musa. Abraham.
Abraham died and was buried, the Bible says.
Bible बताती है कि इब्राहिम मर गया था और उसको दफना दिया था.
Moses died and was buried.
Musa mar gaya to usko dafna diya tha. Anje? Elijah? Melchizedek? Upar bhi chale gaye wo log.
Who appeared with Jesus on the Mount of Transfiguration?
Yeshu Masih ke saath rupantar ke parvat pe kaun aaya tha? अब्राहम कहां से आ गया था अंकल जी? मोसेस एंड एलाइजा.
एलाइजा डिड नॉट डाई, मोसेस डिड डाई. हाउ कुड मोसेस बी देयर?
एलाइजा नहीं मरा था, मूसा मर गया था. तो मूसा कैसे आ सकता था वहां पे?
व्हाट डिड दोज टू मेन रिप्रेजेंट?
वो दोनों व्यक्तियों ने किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे?
यू थिंक अबाउट दैट फॉर अ व्हाइल एंड यू कैन टेल मी लेटर.
आप लोग सोचिए इसके बारे में, फिर बाद में बताइए मुझको.
Any other question?
कोई और प्रश्न? भैया हमको नहीं मालूम. हाँ जी. अच्छा साइंस. तीन तीन हिस्से. دو نہیں تین ہی سے. پہلا نہیں وہ دوسرا پروگریس ہے, پرگتیشیل پرگتی مان سائنٹیفیکیشن کے دو حصے ہیں, پاپ کو مارنا اور یشو مسیح کے سمانتم بننا. تو کچھ اتارنا ہے, پرانے منشیت کو اتارنا ہے, نئے منشیت کو چڑھانا ہے. پرانے شریر کو پاپ کو ہٹانا ہے اور یشو مسیح کے جیسے بنتے جانا ہے.
Now the book of Jude says,
یہودا کی تقریر کہتی ہے,
that Michael the archangel and the devil were arguing about the body of Moses.
یہودا کی پتری میں لکھا ہے کہ,
is that Jude?
Yeah, it's Jude. 9.
Jude 9.
یہودا کے پتری اس کے 9 پد میں لکھا ہے کہ سورگ دوت میکائیل اور موسیٰ اور شیطان نے موسیٰ کے شب کے وشے میں وادیدات کیا.
What was happening there?
کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟
You think about that for a while and you can tell me later.
آپ لوگ سوچیے اس کے بارے میں تھوڑی دیر, پھر بعد میں مجھے بتائیے گا.
But listen carefully.
لیکن دھیان سے.
Sanctification has three parts, three stages.
پوترکرن کے تین چرن ہیں, تین حصے ہیں, تین کھنڈ ہیں.
We have been sanctified.
ہمارا پوترکرن ہو گیا ہے.
We are being sanctified.
ہمارا پوترکرن ہو رہا ہے.
And we shall be sanctified.
اور ایک دن ہمارا پوترکرن ہو جائے گا.
We already have been.
ہو چکا ہے.
Positionally.
ستھان دشا اوستھا.
We are being practically and personally.
ہو رہا ہے ویوہارک طور سے, ویکتیگت روپ سے.
And we shall be finally, fully and completely.
ایک دن ہو جائیں گے انتتا سمپورتا سے پوری طرح سے.
Now can you say the same thing about justification?
کیا جو بات ہم پوترکرن کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیا وہی باتیں ہم دھرمی ٹھہرائے جانے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟
We have been justified.
ہم دھرمی ٹھہرا دیے گئے ہیں.
We are being justified.
ہم دھرمی ٹھہرائے جا رہے ہیں.
And we one day shall finally be justified.
اور ایک دن ہم دھرمی ٹھہرا دیے جائیں گے پوری طرح سے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں علی بات؟
You need to understand the distinction.
آپ کو ان دونوں کے بیچ میں بھنتا کو سمجھنا پڑے گا.
Listen carefully.
دھیان سے سنیے اس بات کو.
The believer is described as being in Christ.
جو وشواسی ہے وہ یشو مسیح میں ہیں, یہ کر کے ورنن کیا جا رہا ہے.
Now let's review again quickly what that means.
آئیے اب ہم لوگ پنراوتی کریں اور پنراولوکن کر کے دیکھیں کیا مطلب کیا ہوتا ہے مسیح میں ہونے کا.
Before we said the non-Christian is in Adam.
پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو غیر وشواسی وہ آدم میں ہے.
And he is in Adam two ways.
اور وہ آدم میں دو طریقے سے ہے,
legally and physically.
ویدھانک طور پہ اور شارک طور
پہ. It means to be united to Adam.
اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدم سے جڑا ہوا ہے.
Paul said all in Adam die.
پولس کہتا ہے سب لوگ جو آدم میں تھے مر گئے.
All that are in Christ shall be made alive.
اور سب لوگ جو مسیح میں ہیں وہ جیوت کیے جائیں گے.
Now one of the main teachings of the New Testament is this wonderful truth of our union with Jesus Christ.
اور نئے نیم کی ایک بہت ہی ادبھت شکشاؤں میں یہ ہے کہ ہم یشو مسیح کے دوارا ہمارا ملن جوڑ دیے گئے ہم اس کے ساتھ.
Over 150 times it talks about or mentions the believer's union with Jesus Christ.
150 سے زیادہ بار نئے نیم ورنن کرتا ہے یشو مسیح کے ساتھ ایک وشواسی کا ملن ہونا.
We're united to him and in him like a body to a head.
اور ہم اس سے ایک شریر جیسے سر سے جڑا رہتا ہے اس طرح سے اسی سمان ہمارا اس سے ملن ہو چکا ہے.
We're united to him like branches to a vine.
اور ہم جیسے ایک برانچ ایک داک سے جڑی ہوئی, داک لتا سے جیسے داک جڑی, داک سے داک لتا جڑی ہوتی ہے ویسے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں.
We're united to him like a wife to a husband.
جیسے ایک پتنی ایک پتی سے جڑی ہوئی ہوتی لگی ہوتی اسی طرح سے ہم بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں.
We're united to him like a building to a foundation.
और जैसे एक भवन एक नींव से जुड़ा होता है उसी तरह हम भी जुड़े हुए हैं
in many different ways the bible says that we are in christ united to christ and he is in us as well
और जैसे बाइबल हमको बताती है कि हम हमारा उससे मिलन हो गया है और उसका हमसे मिलन हो गया अब हम उसमें हैं
so again what does it mean to be in christ
तो यीशु मसीह में होने का मतलब क्या है
अर्थ क्या है in union with christ
इसका मतलब यह है कि यीशु से हमारा मिलन हो गया जोड़ हो गया यीशु में होने का मतलब क्या है यीशु से मिलन हो गया यीशु से जोड़ हो गया है हम यीशु के साथ हैं
we were united to the first adam in two ways
हम पहले आदम से दो मायनों में जुड़े हुए थे
and now we're united to the last adam in two ways
और अब हम जो आखिरी आदम मतलब यीशु से दो तरीके से जुड़े हुए हैं मिलन हो चुका
है we talked about this before but it's very important for you to understand
और हम बात कर चुके हैं इसके बारे में लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझना इस बात को
so that you can clearly teach it to the people of God
ताकि आप इसको स्पष्टता के साथ परमेश्वर के लोगों को सिखा सकें इस बात को
so they can understand the great blessing of union with Jesus Christ
ताकि लोग एक बड़ी आशीष जो यीशु मसीह से मिलन के द्वारा हमें मिलती है उसको समझ सकें
because all of the blessings of the Christian life and experience come forth in our union with Jesus Christ
kyunki jo bhi hamari aashishain hain jo bhi abhi anubhav hain wo sab humko yeshu masih se milan ke dwara milte hain
the bible talks about us being united to Jesus Christ in eternity past
aur bible hame batati hai ki hum yeshu masih se anant kal purv mein mil chuke the jude hue the
he chose us in union with Christ before the foundation of the world
isse pehle ki duniya ki neev dali jati srishti hoti parmeshwar ne hame yeshu masih mein chun liya usse jude hone ke na karan
the bible says that we were in Christ while he lived upon the earth he died upon the cross and he rose from the dead
aur bible humko batati hai ki yeshu masih ke marne mein mrityu mein jeetne mein aur gaade jaane mein jeetne mein bhi hamara usse milan hai aur hum usse jude
The Bible also says that when we believe in Christ, we are joined to Jesus Christ.
और बाइबल हमको ये भी बताती है कि हम when we
believed in Christ, we were also joined to Jesus Christ in our own experience.
तो बाइबल हमको ये बताती है कि जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, तब हम यीशु मसीह से जुड़ गए अपने स्वयं के अनुभव में भी.
So we were joined to Jesus Christ in eternity.
तो हम यीशु मसीह से अनंत काल पूर्व में पृथ्वी से पहले जुड़े हुए थे.
Jesus Christ in redemptive history.
और इतिहास में जब यीशु मसीह हमारे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, छुटकारे के इतिहास में भी हम उससे जुड़े हुए हैं.
We were joined to Jesus Christ in our own personal experience
aur hum apne swayam ke vyaktigat anubhav mein bhi jab usse vishwas karte to hum usse jud jate hain
we will be finally and fully joined to Jesus Christ in glory
aur phir ant mein bhavishya mein jab hum mahimanvit honge tab bhi hum yeshu masih se jude honge hamara milan hoga antata puri tarah
but now we're talking about that third reality of being joined to Christ
aur ab hum teesre satya ke bare mein baat kare avastha ke bare mein baat kare yeshu se milan ke bare mein
right now
is tarah
abhi experience
जब एक व्यक्ति कहते हैं कि हम यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं
joined to Jesus Christ in two ways
हम यीशु मसीह से दो तरीके से जुड़ जाते हैं
remember we were joined to Adam in two ways
याद है कि हम आदम से दो तरीके से मिले हुए थे
legally and physically
वैधानिक तौर से और शारीरिक तौर पर
by legal representation
वैधानिक प्रतिनिधित्व के द्वारा
by physical birth
और फिर शारीरिक जन्म के द्वारा
and we're joined to Christ in two ways
और हम उसी तरह से यीशु मसीह से अपने अभी वर्तमान व्यक्तिगत अनुभव में दो तरीके से जुड़े हुए हैं याद है आपको हमने पहले कैसे क्या कहा था
बाय लीगल रिप्रेजेंटेशन
वैधानिक कानूनी प्रतिनिधित्व के द्वारा वैधानिक प्रतिनिधित्व के द्वारा
And not by physical birth but by spiritual birth
शारीरिक जन्म के द्वारा नहीं लेकिन आत्मिक जन्म के द्वारा हम उससे जुड़ जाते हैं तो दो तरीके से हम अभी वर्तमान में इस समय अपने अनुभवों में उससे जुड़ जाते हैं यीशु मसीह से हमारा मिलन होता है दो तरीकों से पहली बात वो हमारा हमारा वैधानिक प्रतिनिधित्व करता है वो हमारा वैधानिक प्रतिनिधि है दूसरी बात आत्मिक जन्म के द्वारा
वी हैव ए लीगल relationship with Christ.
हमारा यीशु मसीह से हमारी एक वैधानिक कानूनी संबंध है.
And we have a spiritual relationship with Christ.
और हमारा यीशु मसीह से एक आत्मिक संबंध भी है.
This is by representation.
ये प्रतिनिधित्व के द्वारा.
This is by regeneration or the new birth.
ये है नए जन्म के द्वारा या नई उत्पत्ति के द्वारा.
This is by imputation or legal transfer.
और ये हमारे वैधानिक हस्तांतरण के द्वारा होता है.
This is by impartation.
ये हमें प्रदान कर देने के द्वारा होता है.
This gives us a new condition or a new position or a new status.
ये हमारे लिए एक नई अवस्था या नई स्थिति लाके खड़ा करती है.
A new legal status.
ये परमेश्वर के सामने एक नई वैधानिक स्थिति खड़ी कर देती है या स्तर लाके खड़ा.
This gives us a new condition and a new nature.
लेकिन ये हमको एक नया स्वभाव दे देता है अथवा एक वास्तविक परिस्थिति दे देता है, वास्तविक नई परिस्थिति.
This results in justification.
उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं हम.
This results in sanctification.
इसके द्वारा हम पवित्रीकरण में बढ़ते हैं.
This delivers us from the guilt of sin.
ये हमको पाप के बोझ से छुड़ाता है.
This delivers us from the power of sin.
ये हमको पाप की सामर्थ से छुड़ाता है. वहां पे पाप के बोध दोष बोध से छुड़ाता है. दोष नहीं है यहां से, हमें पाप की वास्तविक सामर्थ से छुड़ाता है.
This produces assurance.
उसके द्वारा आश्वासन उत्पन्न होता है. आधे लोग तो खो गए अब.
This produces perseverance.
इसके द्वारा हम लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, बने रहते हैं.
You got two different words for that?
Mm-hmm.
We've covered this before, but it's very important to know and to remember.
इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत जरूरी है कि हम इसको याद रखें और भूले नहीं.
This results in a saving union with Christ.
तो क्योंकि वो हमारा वैधानिक प्रतिनिधित्व करता है, इसके द्वारा हमारे उद्धार या मुक्ति बचाए जाने का मिलन होता है उससे.
This results in an experiential communion or fellowship with Christ.
लेकिन इसके द्वारा हम वास्तविक अनुभव यीशु मसीह के साथ संगति को हम अनुभव करते हैं.
This is the basis or the grounds of our justification.
वो हमारे धर्मी ठहराए जाने का कारण है या बुनियाद है.
This is the basis and grounds of our sanctification.
किंतु ये हमारे धर्मी ठहराए जाने का पवित्रीकरण का बुनियाद या कारण है.
Now we've looked at this before.
हम पहले भी इसको देख चुके हैं.
We've looked at all the different verses.
और हम अलग अलग पदों को देख चुके हैं.
But it's very important that you understand what comes out of our union with Jesus Christ.
लेकिन जरूरी कि हम समझ जाएं यीशु मसीह से मिलन के द्वारा क्या होता है हमारे अंदर.
We have a new position.
एक नई अवस्था है हमारी.
This is the forgiveness of sin.
ये है पापों की क्षमा.
This is deliverance from the guilt of sin.
ये है पापों की क्षमा अपराध
बोध. This gives us assurance.
और ये हमको आश्वासन प्रदान करता है.
This delivers us from the power of sin.
किंतु ये हमें पाप की सामर्थ्य छुड़ाता है.
And it enables us to persevere.
और ये हमें हमारी सहायता करता है कि हम बने रहें, लगे रहें.
Our legal union with Christ is the source of our justification.
यीशु मसीह से वैधानिक मिलन हमारे धर्मी ठहराए जाने का सूत्र है.
Our spiritual union with Christ is the source of our sanctification.
हमारा आत्मिक मसीह से मिलन हमारे पवित्रीकरण का सूत्र है.
And they're all through union with Jesus Christ.
और ये सारी बातें यीशु मसीह से मिलन के द्वारा ही हमको प्राप्त होती हैं.
Now we looked at many different verses.
हम कई पदों को हम देख चुके हैं. इसके बारे में.
Remember what Paul said in 1 Corinthians chapter 1, I believe verse 30.
याद है आपको पहले कुरिन्थियों के 5 अध्याय उसके तीसरे पद में पॉलस ने क्या कहा था?
There are many different blessings that flow out of our union with Jesus Christ.
बहुत सारी विभिन्न आशीषें हैं जो यीशु मसीह से मिलन के कारण हमारे पास उपलब्ध होती हैं.
Paul says chapter 1 verse 30, by his doing you are in Christ Jesus.
पहला कुरिन्थियों के पहला अध्याय तीसरे पद में 30वें पद में एक पॉलस कहता है परंतु उसी के कारण उसके कार्य के कारण तुम मसीह यीशु में हो.
Made for us wisdom from God.
जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान बन गया.
It was a wisdom not that the world understood.
ये ऐसे ज्ञान है जो संसार ने नहीं समझा.
God's wisdom was a slain lamb.
और परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान तो एक मारा हुआ घात के वह मेमना है.
God's wisdom was the cross of Christ.
परमेश्वर की बुद्धि या ज्ञान तो यीशु मसीह का क्रूस था.
The world didn't understand that.
संसार ने तो इस बात को नहीं जाना.
But Paul said it is wisdom from God.
पौलुस कहता है कि ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से है.
And it is righteousness and sanctification and redemption.
और वो कहता है कि ये धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है.
So a legal righteousness.
एक वैधानिक धार्मिकता.
And a practical righteousness.
और एक व्यवहारिक धार्मिकता.
All flow out of our union with Jesus Christ.
और ये सब मसीह यीशु से मिलन के कारण निकलती
है. When a man believes,
जब एक व्यक्ति विश्वास
करता है, God does a miracle in his life and in his heart.
परमेश्वर उसके जीवन में उसके हृदय में एक आश्चर्यकर्म करता है.
He sends his spirit into his heart.
परमेश्वर अपनी आत्मा को उसके हृदय में भेजता
है. By the Holy Spirit, he is saving united to Jesus Christ.
और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो यीशु मसीह से मिल जाता है.
Christ is in heaven.
और यीशु मसीह स्वर्ग में है.
United to him by faith.
हम उससे विश्वास के द्वारा मिलते हैं.
And the righteousness that he earned in his life is immediately imputed or transferred to us.
और जो धार्मिकता उसने कमाई थी इस पृथ्वी पर वो एकदम से तुरंत पलक झपकते ही हमारे खाते में डाल दी जाती है, हमारे लिए हो जाती है.
And also the Spirit who raised Jesus from the dead is imparted to us.
और ना ही हमारे खाते में उसकी धार्मिकता डाल दी जाती है, प्रदान कर दी, बता दी जाती है, मान ली जाती है, लेकिन उसकी आत्मा जिसने उसको मृतकों में से जिलाया था वो तुरंत हमको दे दी जाती है.
Now these things, two things are different, but they are inseparable.
ये दोनों बातें भिन्न हैं, किंतु इनको अलग नहीं किया जा सकता है. इन दोनों बातों में भिन्नता अवश्य है, किंतु इन दोनों बातों को अलग नहीं किया जा सकता.
And as we talked about the difference before between justification and sanctification,
और जैसे हमने पहले भी बात किया है धर्मी ठहराए जाने और पवित्रीकरण में भिन्नता को, फर्क को.
Now we're talking about the source of our justification and our sanctification.
अब हम बात कर रहे हैं हमारे स्रोत के बारे में धर्मी ठहराए जाने के लिए और पवित्रीकरण के लिए.
Listen carefully. Sanctification does not come out of justification.
पवित्रीकरण धर्मी ठहराए जाने के से होकर के नहीं निकलती है.
This is a legal act, a legal declaration.
ये एक वैधानिक घोषणा है.
This is actually a spiritual impartation.
लेकिन यह तो पवित्रीकरण तो एक आत्मिक प्रदान करना है, देना है.
Our sanctification comes directly out of our spiritual union with Jesus Christ.
हमारा पवित्रीकरण यीशु मसीह से जो आत्मिक मिलन हुआ है उसका सीधा सीधा नतीजा है, परिणाम है.
Your responsibility is to study these things in the Word of God.
और आपकी जिम्मेदारी की परमेश्वर वचन में आप इन बातों को पढ़ें, अध्ययन करें.
To be able to see them and to be able to understand them from the Word of God.
कि आप इनको देख सके, समझ सके परमेश्वर के वचन में से.
And to be able to clearly teach them to the people of God.
और फिर आप परमेश्वर के लोगों को इस बात को स्पष्टता सिखा
सके. So they can see it with their own eyes.
ताकि वो अपनी खुद की आंखों से देख सके.
They can understand this.
वो ये समझ सके इस बात को.
They have a new legal record.
कि उनके पास एक नया वैधानिक अभिलेख है.
And they have a new nature.
और ना सिर्फ एक नया वैधानिक लेख लेकिन नया स्वभाव भी है, मनुष्यत्व भी है.
That's what it means to be united to Jesus Christ.
यही है यीशु मसीह से मिलन का मतलब अर्थ.
Any questions?
कोई प्रश्न?
Now your privilege and responsibility is to study these things and clearly teach them to others.
Ab aapki zimmedari, aapka saubhagya ye hai ki aap in baaton ko samjhein aur logon ko sikhaein.
You understand what Paul is saying?
Aap samajh rahe hain ki haan Paulus yahan pe kya kehna chah raha hai?
It's not enough to write this in your notebook.
Kaafi nahi hai ki aap apne copyon mein isko likh le.
You need to write it in your heart.
Aapko isko apne hriday mein likhna hai.
Now listen carefully.
Dhyan se suni baat ko.
We're talking about sanctification.
Hum pavitrikaran ke bare mein baat kar rahe hain.
Yesterday we talked about the gospel, true conversion and justification.
Kal humne susamachar, sachche hriday parivartan aur dharmi thehraye jane ke bare mein baat
kiya. Today we're talking about sanctification and union with Jesus Christ.
Aaj hum baat kar rahe hain dharm pavitrikaran ke bare mein jo ki Yeshu Masih se milan ke dwara hoti hai.
Any questions?
Koi prashna?
Is that a comment or a question?
Lunch pe baat karenge hum aaram.
Let me ask you this.
Main aapse poochta hoon ye.
All blessings flow out of Christ.
Sari aashishe Yeshu Masih mein se nikalti hain.
There is a great and a high blessing that flows out of union with Christ.
Yeshu Masih se milan ke dwara ek badi mahaan aur uchi aashish pravahit hoti hai.
That is the blessing of adoption.
Aur wo aashish hai lepalak putr banaye jane ki, lepalak pan ki.
Now is adoption a result of our legal union with Christ or our spiritual union with Christ or a result of both our legal and spiritual union with Christ?
Ab hum ko bataiye hamara lepalakpan Yeshu Masih se vaidhanik milan ke karan hua hai ya sharir ya aatmik milan ke karan? Haan ji, both.
Adoption gives us a new position and a new experience.
Lepalakpan humko ek nayi avastha ya nayi sthiti deta hai aur saath hi saath ek naya anubhav bhi deta hai.
We are formally and legally adopted into the family of God.
Hum log aupcharik taur se aur vaidhanik taur se parmeshwar ke parivar mein hamara hame god le liya jata hai.
Paul says we also have the spirit of adoption placed within us whereby we actually cry out abba father.
Aur Paulus kehta hai ki hamare bheetar lepalakpan ki atma hamare andar atma dal di aati hai, isiliye hum kehne paate hai abba hai pita.
And this is one of the great blessings of the child of God.
Parmeshwar ke santan hone ki ek sabse badi aashish ye hai.
It's not enough to know that you are simply forgiven of your sin.
Bas ye janna sirf kafi nahi hai ki hamare paap shama ho gaye hain.
You need to know that you are a son and a daughter of the living God.
Lekin hame ye janna to hai ki hum jeevit parmeshwar ke putra ya putri hain.
And what are the benefits of adoption?
Acha lepalakpan ke kya kya fayde hain?
Remember we said it is union with Christ.
Yaad hai aapko humne kaha tha Masih se milan.
Two ways.
Do tarike se hota hai hamara Masih se milan.
Legal.
वैधानिक
एंड स्पिरिचुअल
आत्मिक दो तरीके से मिलन होता है मसीह से वैधानिक आत्मिक
a new position, this gives us a new condition.
और वैधानिक हमारी नई स्थिति या अवस्था को बताता है
एंड अडॉप्शन इन बोथ
आत्मिक हमारी नई वास्तविक परिस्थिति को बताता है और लेपालकपन में दोनों शामिल हैं दोनों वैधानिक और आत्मिक मिलन की वजह से हमारा लेपालक हमें लेपालकपन का दान मिलता है.
God has formally adopted us into his family and he's legally declared us to be his children.
परमेश्वर ने हमको औपचारिक तौर पे अपने परिवार में प्रवेश करा लिया है लेकिन वैधानिक तौर पर सबके सामने अपना पुत्र या पुत्री होने की घोषणा भी करता है.
He also put his Holy Spirit within us, a spirit of adoption whereby we cry out, Abba Father.
उसने अपनी आत्मा भी हमारे अंदर डाल दी है, लेपालकपन की आत्मा, तभी तो उसकी वजह से हम अब्बा और हे पिता करके पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं.
Name me at least five blessings or benefits that come from adoption.
मेरे को आप पांच उन आशीषों को बताइए जो कि हमारे पास आते हैं लेपालकपन की वजह से. हाँ, इनहेरिटेंस.
इनहेरिटेंस
पांच, ये तो पहली थी.
Let me ask you this.
Father's love.
The father's love.
नकल कर रहे भाई तुम.
Is he reading old notes?
That's what I asked him. Huh? The discipline of the father.
The what?
Discipline of
the
father.
That's true. Father's discipline.
Holy Spirit.
That Holy Spirit. How do we know we have a future inheritance?
हमें कैसे मालूम कि भविष्य में हमें उत्तराधिकार मिलेगा?
We get a down payment now.
क्योंकि हमें अरे आप शुरू में मिल जाता कुछ. पहला क्या? बयाने में मिल जाता. धन्यवाद. बयाने में पवित्र आत्मा मिल जाता.
एंड व्हाट इज दैट फर्स्ट पेमेंट और डाउन पेमेंट और दैट प्लेज ऑफ आवर अडॉप्शन?
वो जो पहली किस्त या बयाना क्या है जो हमें लेपालकपन पे मिलता है, क्या है वो पहला बयाना क्या मिलता है हमको? पवित्र आत्मा.
होली स्पिरिट.
पवित्र आत्मा.
What else?
और कौन कौन सी आशीषें हैं? नहीं नहीं, लेपालकपन पुत्र बन जाने से हमें कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं? धर्मी ठहराए जाने की वजह से हमको ये हो रहा है. पार्ट ऑफ ए फैमिली. पार्ट ऑफ ए फैमिली. हाँ.
Well, we can say that in that we now have immediate access into the presence of our Father.
पिता की उपस्थिति में हमारे पास रास्ता खुल जाता है. पिता की उपस्थिति में जाने के लिए हमारे पास रास्ता खुल जाता है.
Now, in the first century, when a father adopted a son,
पहली शताब्दी में जब एक पिता अपने किसी बेटे को गोद लेता था,
whether it was his own physical born son or it was not his physically born son,
चाहे वो उसके खुद के शरीर से पैदा हुआ बालक हो या उसके शरीर से ना पैदा हुआ बालक हो,
he put him under a tutor to prepare him for the full benefits of sonship.
और वो क्या करते थे पहले शताब्दी में? क्या करते थे पिता लोग? उस जन को, उस जवान बालक को एक शिक्षक के अधीन डाल देते थे ताकि वो लेपालकपन के फायदों को पा सके कुछ समय के बाद.
That tutor taught him and led him and prepared him to be a legally adopted son.
और वो शिक्षक उस लड़के को शिक्षा देता था, तैयार करता था, समझाता था, उस कानूनी वैधानिक तौर पे लेपालकपन के लिए तैयार करता था.
And he didn't spend much time with his real father. He spent most of his time with his tutor.
और उस समय जो ये बालक होता था अपने असली पिता के साथ समय नहीं व्यतीत करता था, लेकिन अपने शिक्षक के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था.
But when he came of age, usually sometimes 12, 14 or 16,
और जब वो अपनी उम्र में होता था, कभी कभी शायद 12 या 14 या 16 साल का जब हो जाता था,
he went through a process in which the father legally adopted him.
और फिर उसके पिता एक प्रक्रिया में से होकर के जाते थे जिसमें वैधानिक तौर से फिर से वो अपने बेटे को कानूनी तौर पे अपना बेटा बना लेते थे, गोद ले लेते थे.
And everything in the father's house became his.
और जो कुछ भी पिता के घर में होता था वो एकदम से इस लड़के का फिर से पुनः हो जाता
है. Consistent immediate access into the presence of his father.
और ना सिर्फ इतना, अब अपने पिता के सामने पहुंच होती थी, कभी वो अपने पिता के पास जा सकता था.
He was no longer under the discipline of a tutor, he was under the discipline and instruction of his father.
और अब अपने शिक्षक के अनुशासन और अपने शिक्षक के शिक्षा के अधीन नहीं रहता था, बल्कि अभी अपने पिता के अनुशासन और पिता की शिक्षा के अधीन आ जाता है.
And that's what God has done for us.
और यही चीज परमेश्वर ने हमारे लिए किया, आपके लिए किया.
Most Indian men,
बहुत सारे भारतीय आदमी लोग, बहुत सारे चीनी आदमी लोग
probably didn't have a close relationship with their father.
अपने पिता के साथ उनका बड़ा ही नजदीकी संबंध नहीं था.
Let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता
हूँ. Your father ever tell you he loved you?
क्या आपके पिता ने कभी आपसे कहा कि वो आपसे प्रेम करते हैं?
Did your father ever spend time with you and play with you?
आपके पिताजी ने कभी आपके साथ समय व्यतीत किया और आपके साथ कभी खेले हो?
Your father ever hug or kiss you?
आपके पिताजी ने कभी आपको गले लगाया या आपको चूमा है?
Many Chinese men and many Indian men did not have a close positive relationship with their father.
अधिक हाँ? अरे भैया सुन लीजिए, बाद में आएगा. अधिकांश भारतीय पिता और अधिकांश चीनी पिता लोगों का अपने बालकों से नजदीकी संबंध नहीं होता है.
But if you are a Christian,
लेकिन अगर आप मसीह हैं,
your father loves you,
आपका पिता आपसे प्रेम करता है.
He has given you his inheritance.
उसने अपने उत्तराधिकार दिया है.
You have immediate access into his presence.
चौथी बात, अपने पिता के सामने पहुंच.
And because he loves you, he will discipline you.
क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको अनुशासन करेगा.
And discipline involves two things.
और इस अनुशासन में दो चीजें होती हैं.
Instruction and correction.
निर्देश और सुधार.
He instructs and directs you in the way that you are to go.
वो आपको निर्देश देगा और सिखाएगा किस रास्ते में जाना है.
And he corrects you and restores you when you have gone out of the way.
वो आपको सुधारेगा और पुनः स्थापित करेगा जब आप रास्ते से गलत भटक जाएंगे.
That is the blessing of adoption.
ये है लेपालकपन की आशीष.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए. चौथी बात,
we are not only pardoned sinners.
हम पाप क्षमा हुए पापी नहीं है केवल.
We are not only redeemed servants.
हम केवल छुड़ाए हुए सेवक नहीं हैं.
The greatest blessing and identity of the Christian is as an adopted child of God.
एक मसीही की सबसे बड़ी आशीष या पहचान वो ये है कि हम परमेश्वर के गोद ले हुए संतान हैं.
And your responsibility is to grow in your deeper understanding and experience of that reality.
और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप और भी अधिक गहराई से उस समझ में बढ़ते चले जाएं.
To be able to clearly teach it and preach it to others so that people can fully understand their relationship with God as Father.
ताकि आप सफाई से और स्पष्टता के साथ लोगों को प्रचार कर सके, समझा सके, ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर पिता उनका
that we relate to God no longer as a righteous judge regarding the guilt of our sin.
अब हमारे पाप के अपराध बोध के संबंध में अब हम परमेश्वर से एक धर्मी न्यायाधीश के रूप में संबंध नहीं रखते.
We relate to God as a loving Father who is concerned about our growth into Christ.
लेकिन अब हम परमेश्वर पिता से एक ऐसे पिता के समान वास्ता रखते हैं जो कि हमारी वृद्धि और आत्मिक परिपक्वता की चिंता करता है, उसके लिए सोचता रहता है.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपके पास?
We've talked about just several things this morning.
हम लोग कई बातों के बारे में बात कर चुके हैं आज की सुबह.
We redefined again sanctification.
हमने पुनः पवित्रीकरण को परिभाषित किया है.
And we've talked about what it means to be united to Jesus Christ.
और हमने बात किया यीशु मसीह से मिले होने का मतलब क्या होता है.
And all of your life you need to study and grow in your experience of these realities.
आपके संपूर्ण जीवन आपको इसको जानना है और इन तथ्यों में बढ़ते रहना है.
Any questions?
कोई प्रश्न आपके सामने? हाँ जी. I said you said there were five blessings, we only gave four.
Well then give me one more.
तो फिर दीजिए ना एक और.
I asked you for five blessings.
मैंने आपसे पूछा था पांच आशीष.
I didn't say I was going to tell you five blessings.
मैंने नहीं कहा था कि मैं आपको बताऊंगा पांच आशीष. बताइए. I will become part of the family of God, which is the church.
Yes. We're part of the family of God.
हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं.
That is, we have other brothers and sisters in Christ.
मतलब ये कि अब हमारे पास अन्य भाई बहन हैं मसीह में.
And this is a great blessing.
और ये एक बड़ी महान आशीष है.
So that is why that you should be joined to the people of God.
इसीलिए आपको परमेश्वर के लोगों से मिला होना चाहिए.
The church is the house of God.
कलीसिया परमेश्वर का घर है.
Not this building.
ये भवन नहीं.
It's not made out of physical stones.
ये
भौतिक शारीरिक पत्थरों से नहीं
Peter
बना है.
Peter says it's made out of living stones.
पत्रस कहता है कि जीवित पत्थरों से बना है ये घर.
Born again by the Spirit of God.
हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है.
United to Jesus Christ, their living head.
हम मसीह से जुड़े हुए हैं जो कि जीवित सर है हमारा.
They are united to one another.
और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
Like my finger is united to my hand.
जैसे मेरी उंगलियां मेरे हाथ से जुड़ी
हुई हैं. My hand is united to my arm.
मेरा हाथ मेरे हाथ से जुड़ा हुआ है.
My arm is united to my body.
मेरा हाथ मेरे शरीर से जुड़ा
हुआ है. My body is united to my head.
मेरा शरीर मेरे सर से जुड़ा हुआ है.
Christ is the head of the body.
मसीह देह का सर है.
We are the members of the body.
हम देह के सदस्य हैं.
We are united to one another.
हम एक दूसरे से जुड़े हुए
हैं. We are to love one another.
इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करना
है. We care for one another.
इसलिए एक दूसरे से चिंता करना है.
We pray for one another.
इसलिए
We are to help one another.
इसलिए एक दूसरे से सहायता करना
है. We are to teach one another.
इसलिए एक दूसरे से
सिखाना है. We are to exhort one another.
इसलिए एक दूसरे को सहायता करना
है. We are to have true living fellowship and union with Jesus Christ.
इसलिए हमें वास्तविक जीवित संगति होनी चाहिए यीशु मसीह से मिलन के कारण.
God has not called us to live our Christian life alone.
परमेश्वर ने हमें हमारे मसीह जीवन जीने के लिए अकेले नहीं बुलाया.
Almost all of the commandments in the New Testament are given in a context of a living fellowship.
और ज्यादातर अधिकांश आज्ञाएं जो नए नियम में दी गई हैं वो जीवित कलीसिया संगति सहभागिता परिवार के संदर्भ में दी गई हैं.
And we have the great blessing of being in the family of God.
और इसलिए हमारे पास एक बड़ी आशीष है परमेश्वर के परिवार के सदस्य.
So there are many more blessings that flow forth from adoption.
और बहुत सारी अन्य आशीषें हैं जो पालकपन से आती हैं.
But these are some of the main ones.
लेकिन ये हैं कुछ मुख्य आशीष.
Have you experienced in your own heart and life these realities?
क्या आपने स्वयं के जीवन हृदय में इन वास्तविकताओं को अनुभव किया है?
Do you understand in your own mind these glorious blessings?
क्या आप अपने स्वयं के मस्तिष्क में इन महिमामय आशीषों को समझते हैं?
Can you preach clearly with your own mouth these benefits?
क्या आप अपने स्वयं के मुख से इन फायदों को लोगों के सामने प्रचार कर सकते हैं?
Because many Christians do not understand, nor do they experience God as Father.
क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोग ना ही समझते हैं और ना ही अनुभव करने पाते हैं परमेश्वर को अपने पिता के रूप में.
Your responsibility is to open up all the spiritual blessings that are in Christ Jesus.
और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके सामने वे सारी आशीषों को खोल के रख दें जो उनके पास है यीशु मसीह में होने के कारण.
Like a man opening up a treasure box of very valuable jewels.
और जैसे एक आदमी एक खजाने के तख्ते को खोलता है और उसमें से बहुत ही बहुमूल्य रत्नों को निकाल देता है.
One of them out.
और फिर उसमें से एक रत्न को बाहर निकालता है.
Look at this.
और फिर वो कहता है इसको देखो.
Look at this.
इसको देखो.
Look at this.
और इसको देखो.
This is for you.
ये तुम्हारे लिए.
But that's not all.
और लेकिन ये सिर्फ
Look
काफी
at
नहीं है.
This.
अरे देखो एक
Look और at it this way.
और इसको
Look
देखो.
At it this way.
और इस दिशा
This
देखो.
Is your.
ये तुम्हारे लिए.
Look at this.
और इसको देखो.
Look at it like this.
और इसको यहाँ पे
Understand what it is.
इसको समझो क्या है ये.
God has given it to you.
परमेश्वर ने तुमको दे दिया.
If you don't Understand that?
अगर आप इसको नहीं समझेंगे,
you have never experienced it.
अगर आपने इसको कभी अनुभव नहीं किया है,
you keep the treasure box closed.
तो फिर आप उस खजाने के डब्बे को बंद करके रखे हुए हैं.
And the people will not know the inheritance they have in Jesus Christ.
और परमेश्वर के लोग कभी भी नहीं जानेंगे कि यीशु मसीह में उनके पास कौन सा उत्तराधिकार है.
All the fullness of the Godhead bodily dwells in Him.
और परमेश्वर की संपूर्णता परिपूर्णता देह में उसमें उपस्थित
है. All the treasures of wisdom and knowledge.
और यीशु मसीह में सारे ज्ञान और बुद्धि की के 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 खजाना है परिपूर्णता
है. You need to live in prayer.
इसीलिए आपको प्रार्थना में जीना है.
You need to live on your knees.
इसीलिए आपको अपने घुटनों में जीना है.
You need to have fellowship with the living God.
इसीलिए आपको एक जीवित परमेश्वर से आत्मिक संगति होनी चाहिए.
That's why you need to grow closer to the Lord Jesus Christ.
इसीलिए आपको यीशु मसीह के नजदीक ही चलना है.
That's why you need more of the power of the Holy Spirit in your life.
इसीलिए आपके पास पवित्र आत्मा की और सामर्थ्य होनी चाहिए.
The blessings of the triune God would be yours.
और फिर उस त्रिएक परमेश्वर की आशीषें आपके होंगी.
That is what Paul prays in Ephesians 1 and Ephesians 3.
और यही चीज इफिसियों पहले अध्याय में इफिसियों 3 में पॉलस प्रार्थना करता है.
And if you do not know nor have you experienced those blessings, you cannot communicate them to others.
और अगर आप इन आशीषों को नहीं जानते ना ही समझते तो आप दूसरों को ये आशीषें कभी बता नहीं पाएंगे.
Or you can just read your notes and tell it to them, but it has no connection with them.
हो सकता है कि आप अपने जो आपने कॉपी में लिखा उसको पढ़ के लोगों بتا دیں, لیکن آپ سے اس کا کوئی سمبندھ نہیں, کوئی سمپرک نہیں, کچھ لینا دینا نہیں ہے.
A man speaks out of that which fills his heart.
ایک ویکتی جو اس کے ہردے میں بھرا ہوا ہے اسی میں سے نکل کے لوگوں کے سامنے بات چیت کرتا ہے.
Again what the apostle John said.
اور یاد رکھیے کہ پریرت یوحنا نے کیا کہا تھا.
What we have seen.
جو ہم نے دیکھا ہے.
What we have heard.
جو ہم نے سنا ہے.
What our hands have handled.
جن چیزوں کو میرے ہاتھ میں
چھوا ہے. The word of life.
اور اس جیون کے پربھو کے بارے میں.
We proclaim to you.
یہ بات ہم تم کو بتاتے ہیں.
جی Paul Peter said I was with him on the mountain.
اور پولس اور پریرت پطرس کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس پروت پہ
تھے.
ہم نے اس کی آواز سنا.
And I saw his glory.
ہم نے اس کی مہیما کو دیکھا.
And I proclaim it to you.
اور ہم اس کو تم کو بتاتے ہیں.
But if you've never opened that treasure box.
اگر آپ نے کبھی اس خزانے کے ڈبے کو نہیں کھولا.
You haven't looked and enjoyed the blessings that are in Christ.
اگر آپ نے یشو مسیح میں جو آشیش ہیں ان کو نہیں ان کا
ہاتھ دکھایا. You can't give it to others.
تو آپ دوسروں کو کیسے دینے پائیں گے؟
Sometimes preachers just give the people rocks.
کبھی کبھی پرچارک لوگوں کو خالی پتھر لا کے دے دیتے ہیں.
They don't give them real jewel.
وہ ان کو اصلی رتن لا کے نہیں دیتے ہیں.
They give them a stale loaf of bread or a stone rather than the living bread of life.
وہ ان کو سوکھے پتھر یا سوکھی روٹی ڈبل روٹی لا کے دیتے بجائے کہ جیون کی روٹی ان کو لا کر کے دیں یا بہمول رتن لا کے دیں.
Your responsibility
آپ کی ذمہ داری ہے
is to take people in the scripture face to face with the living God.
کہ آپ لوگوں کو پوتر شاست میں لے کر کے جائیں اور پرمیشور سے ان کا سامنا کرائیں.
Moses went up on the mountain.
موسیٰ سر کے اوپر چلا گیا.
He had fellowship with God.
اس کی سنگتی ہوئی پرمیشور کے ساتھ.
The glory of God was burned upon his face.
پرمیشور کی مہیما اس کے مکھ پہ تھی.
He came down and preached to the people.
اور اس نے آ کر کے لوگوں کو پرچار کیا.
He put a veil over his face.
اور پھر اس نے اپنے اوپر ایک پردہ ڈالا.
Why?
کیوں ڈالا؟
Because the glory was fading.
کیونکہ وہ مہیما جا رہی تھی.
But we are ministers of a new covenant.
لیکن ہم نئی واچا کے پرچارک ہیں.
Not of the letter that kills.
اور اس اکشر کے نہیں جو مارتا ہے.
Spirit that gives life.
لیکن آتما کا جو جیون دیتا ہے.
And as you go to the mountain.
اور جب آپ پروت پر جائیں.
And the place of prayer.
اور پرارتھنا کے استھان پر.
And behold as in a mirror of the word the glory of the Lord and the face of Jesus Christ.
اور جب آپ یشو مسیح کے مکھ میں پرمیشور کی مہیما کو اس شیشے میں ارتھات اس درپن میں جو پرمیشور کا وچن ہے دیکھیں گے.
By the Spirit of God are supernaturally transformed into that same image.
سو پرمیشور کے پوتر آتما کے دوارا آپ الوکک طریقے سے اسی کے سوروپ میں بدلتے جائیں گے, پریورتت ہوتے جائیں گے.
Progressive stage of Christ like glory to another.
اور انش انش کر کے ایک تیتھی سے دوسری تیتھی میں آپ اس کے سمان ہوتے چلے جائیں گے.
When you stand before the people,
اور جب پھر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے,
they see and sense the glory of God.
اور پھر وہ لوگ پرمیشور کی مہیما کو دیکھیں گے, انبھو کرنے
پائیں گے.
اور یشو مسیح کی
the power of the Holy Spirit.
پرمیشور پوتر آتما کی سامر.
When you speak to them,
اور جب آپ ان سے بات کریں گے,
it's not just empty words.
تو وہ خالی کھوکھلے شبد نہیں ہوں گے.
It is the power of God.
یہ پرمیشور کے سامرتھ ہوگی.
But if you don't live on the mountain,
لیکن اگر آپ پروت پہ نہیں رہیں گے,
if you don't behold the glory,
اگر آپ اس کی مہیما کو نہیں دیکھیں گے,
you will not be transformed.
تو آپ بدلیں گے نہیں.
And if you don't enjoy the blessings that are in Christ,
اور یشو مسیح میں جو آشیش ہیں اگر آپ ان کا آنند نہیں اٹھائیں گے,
you cannot tell others.
تو آپ ان کو نہیں بتانے پائیں گے.
You'll be like those professed disciples in Ephesus.
اور آپ ان ششیوں کے سمان ہوں گے جو انگیکار تو کرتے ہیں ایفیسوس کے شہر میں.
They tried to cast out a demon.
انہوں نے کوشش کیا دشت آتما کو نکالنے کی.
And what did they say?
اور پھر کیا کہا انہوں نے؟
In the name of Jesus that Paul preaches, come out of them.
انہوں نے کہا یشو مسیح کے نام سے جن کا پرچار پولس کرتا ہے تم باہر آ جاؤ.
What did the demon say?
ان دشت آتماؤں نے کیا کہا ان سے؟
We know Jesus.
ہم یشو مسیح جانتے ہیں.
We know Paul.
ہم پولس کو جانتے ہیں.
But who are you?
لیکن تم کون ہو؟
A lot of preachers are like that.
بہت سارے پرچارک اس طرح کے ہوتے ہیں.
They say the words.
وہ شبد کہتے ہیں.
But they don't have the power.
لیکن ان کے پاس سامرتھ نہیں ہوتی ہے.
Why?
کیوں؟
They're preaching an unfelt, unexperienced Christ.
کیونکہ وہ لوگ ایک ایسے مسیح کا پرچار کر رہے ہیں جس کو انہوں نے انبھو نہیں کیا ہے, جس کو انہوں نے جانا نہیں ہے.
Have you seen him?
کیا آپ نے اس کو دیکھا؟
Do you know him?
کیا آپ اس کو جانتے
ہیں؟ Are you walking with him?
کیا آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں؟
Are you living on the mountain?
کیا آپ اس پروت پہ جیتے ہیں؟
If you do that,
اگر آپ ایسا کریں گے,
you will be able to communicate in the power of the Spirit of God, the glory of Christ.
अगर आप ऐसा करने पाएंगे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप यीशु मसीह की महिमा को लोगों तक बताने पाएंगे, पहुंचाने पाएंगे.
All blessings are in Christ.
सारी आशीषें मसीह में हैं.
The life of Christ,
यीशु मसीह का जीवन,
death of Christ,
यीशु मसीह की मृत्यु,
the resurrection of Christ,
यीशु मसीह का जीवन,
and the present exaltation of Christ,
और यीशु मसीह का ऊपर उठाया जाना.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए.
There's a difference between an intellectual understanding of historical facts.
और एक फर्क है, भिन्नता है अपने बुद्धि में, दिमाग में उस ऐतिहासिक तथ्य को जानना, जानकारी रखना,
and an experiential relationship with a living person.
लेकिन एक अनुभव के साथ संबंध एक जीवित व्यक्ति के साथ, उसके बारे में जानना ऐतिहासिक तथ्य के रूप में, और दूसरी बात उसको जानना व्यक्तिगत तौर पे बहुत फर्क है.
You preach the facts concerning Jesus Christ without the relationship with Jesus Christ, you will be like a Pharisee.
अगर आप यीशु मसीह के बारे में तथ्यों को लोगों के सामने बताएंगे बिना उससे संबंध रखते हुए, तो हम और आप फरीसी के समान होंगे.
Paul said this.
पौलुस ने ये कहा.
We preach Christ.
हम मसीह का प्रचार करते हैं.
And if you know him.
अगर आप उसको जानते हैं.
And if you walk with him.
अगर आप उसके साथ चलते हैं.
And if you have fellowship with him.
अगर आप उसके साथ
चलते हैं. And if you conform to his image.
अगर आप उसके स्वरूप में बनते चले
जाते हैं. When you stand to preach.
तो जब आप खड़े होते प्रचार करने के लिए.
Whether you preach in a quiet voice.
चाहे आप धीरे आवाज में प्रचार करें.
Whether you preach in a loud voice.
चाहे आप जोर की आवाज में प्रचार करते हैं.
However you preach.
जैसे भी आप प्रचार करें.
If you've been with Christ.
अगर आप मसीह के साथ रहे हैं.
People will know it.
लोग जान जाएंगे इस बात को.
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.